ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 15 राजसूय यज्ञ। अब हम कन्नौज की ओर आते हैं। जयचंद के पिता विजयपाल बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी वीरता की प्रशंसा चारों ओर फैल रही थी। एक बार उन्होंने दक्षिण देश पर आक्रमण किया और घूमते घूमते बहुत सारे देशों को जीतते हुए अंत में कटक जा पहुंचे। उस समय कटक के राज सिंहासन पर प्रतापी मुकुंद देवराज करते थे। उनके यहाँ 300,000 घुड़सवार तथा 100,000 हाथी और 1,000,000 पैदल सेना थी। उन्होंने विजयपाल के आने का समाचार सुनकर आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बहुत सारा धन रत्न तथा दास दासी देकर अपनी कन्या भी उन्हें अर्पण कर दी। विजयपाल ने उस कन्या का विवाह अपने पुत्र जयचंद से कर दिया। जब जयचंद की इस पत्नी की उम्र 16 वर्ष हुई, तब उसके गर्भ में चंद्रमा के समान दीपवती कुमारी संयोगिता ने आनंद संवत 1133 में जन्म लिया। यह कन्या बहुत रूपवती थी। आनंद संवत 1144 में जब राजा जयचंद राजसूय यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, उस समय संयोगिता की उम्र 12 वर्ष थी। उसकी सुंदरता को देखकर सभी मुग्ध रहते थे। जयचंद तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनका लाड़ प्यार इतना ज्यादा था कि संयोगिता का स्वभाव दिनों दिन हठी होने लगा था। बालुका राय का नाम तो आप जानते ही हैं। यह बालुका राय जयचंद के भाई थे। उनकी सलाह से ही जयचंद ने राजसूय यज्ञ शुरू करना चाहा था। राजसूय यज्ञ में छोटे से बड़े तक जितने राजा थे सबको निमंत्रण देना पड़ता था। इसीलिए जयचंद ने विभिन्न प्रांतों के राजाओं को इकट्ठा करने के लिए निमंत्रण भेजने का विचार किया। कन्नौज के राजमहल में आगंतुकों के सत्कार तथा दान पुण्य के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी की जाने लगी। जयचंद के मंत्री सुमंत ने उन्हें हर तरह से समझाया कि यज्ञ करना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल यज्ञ का सुचारू रूप से संपन्न होना किसी प्रकार भी संभव नहीं है, बल्कि इससे बैठे बिठाए विरोध बढ़ने की संभावना है। परंतु जयचंद ने अपने मंत्री की एक बात भी नहीं मानी और उसे आज्ञा दी कि तुम पृथ्वीराज को लिखो कि दिल्ली के राज्य पर दोनों का ही अधिकार है, इसीलिए आधा राज्य हमें दे दो और यज्ञ में उपस्थित होकर काम करो। बहुत समझाने पर भी जयचंद नहीं माना। तब मंत्री सुमंत पृथ्वीराज से मिलने के लिए खुद दिल्ली गया। सुमंत ने बहुत तरह से पृथ्वीराज को समझाया और अंत में यह तय हुआ कि सारे सामंत इकट्ठे होकर इस विषय पर विचार करें कि इस समय क्या कर्तव्य है। इधर तो यह बातें हो रही थीं, उधर जयचंद का भेजा हुआ अन्य दूत राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर आ पहुंचा। उस निमंत्रण पत्र में लिखा था कि जल्दी यहां आकर जयचंद्र की आज्ञा अनुसार राजसूय यज्ञ का जो काम सौंपा जाए उसका पालन कीजिए। इस परवाने को पढ़कर पृथ्वीराज सन्न हो गए। उन्होंने बहुत तरह से दूत को समझाया कि राजा जयचंद का राजसूय यज्ञ करना उचित नहीं है, तुम लोग जाकर अपने राजा से कहो कि इस काम में हाथ नहीं डालें। दूत लौट गया, सुमंत भी लौट गए। सुमंत ने लौटकर फिर जयचंद को बहुत समझाया, परंतु उसने एक न सुनी। उस समय होनी उसके माथे पर सवार थी। उसे जब पता चला कि पृथ्वीराज ना तो 1 इंच जमीन ही देना चाहते हैं और ना ही अधीनता स्वीकार करके राजसूय यज्ञ में उपस्थित ही होना चाहते हैं, तब उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने युद्ध विद्या विशारद बालुका राय तथा यवन सेना के स्वामी खुरासान खां को बुलाकर अपने राज्य की रक्षा का भार सौंपा और खुद यह सोचने लगा कि पृथ्वीराज को हटाकर जबरदस्ती पकड़ लाए। परंतु यह काम आसान नहीं था। यज्ञ का समय निकल जाने की संभावना थी, इसीलिए उसने आज्ञा दी कि पृथ्वीराज की सोने की प्रतिमा बनवाकर दरवाजे पर स्थापित कर दिया जाए और यज्ञ का काम आरंभ किया जाए। यही राय बनी और यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। यह समाचार पृथ्वीराज के पास भी जा पहुंचा। पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वारपाल के स्थान पर रखी जाने का समाचार सुनकर सारे सामंत गुस्से से अधीर हो उठे। सबने एक स्वर से युद्ध की सलाह दी। सबकी यही सलाह थी कि कन्नौज पर आक्रमण करके यज्ञ विध्वंस कर डाला जाए, परंतु कैमास ने कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। जयचंद की ताकत बहुत ज्यादा है तथा अन्य राजा भी इस समय वहां उपस्थित हैं, इसीलिए खोखंदपुर पर आक्रमण करके बालुका राय को मार डाला जाए। भाई की मृत्यु से जयचंद अपने आप ही सूतक में जा पहुंचेगा और यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। इसी विचार से बालुका राय को मारने के लिए पृथ्वीराज सेना सहित चल पड़े। फिर जैसे ही इस सेना ने खोखंदपुर जाने के लिए कन्नौज राज्य की सरहद में पैर रखे, वैसे ही चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि गांव उजाड़े और जमींदार पकड़े जाने लगे। चौहान सेना के सुपद्रव से दुखी होकर प्रजा ने बालुका राय से फरियाद की। बालुका राय बहुत वीर था। उन्होंने यह समाचार सुनकर पृथ्वीराज को अपने राज्य में उपस्थित होने के पहले ही रोकना चाहा। युद्ध की तैयारियां होने लगी। बालुका राय की सेना ने अचानक आक्रमण कर चौहान सेना को घेर लिया। बहुत भयानक युद्ध हुआ। इसी प्रकार मार काट होते होते बालुका राय के हाथी को पृथ्वीराज ने एक ऐसा हाथ मारा कि वह लुढ़क गया, जिससे बालुका राय की सेना के पैर पीछे हटने लगे और चौहान सेना मजबूत हो गई। कुछ ही देर बाद कर्ण तथा बालुका राय का आमना सामना हो गया। कुछ देर तक दोनों वीर बहुत आवेश में युद्ध करते रहे, परंतु अचानक कर्ण ने झपट कर एक ऐसा हाथ मारा कि बालुका राय का सिर धड़ से अलग हो गया। बालुका राय के फिर जमीन पर गिरते ही उसकी सेना घबरा गई। इस युद्ध में बालुका राय के 5,000 तथा पृथ्वीराज के 700 सैनिक मारे गए। लड़ाई में शत्रु सेना को हराकर पृथ्वीराज खोखंदपुर को लूटने के लिए आगे बढ़े और खोखंदपुर को लूटकर दिल्ली वापस लौट आए। जिस समय जयचंद को यह समाचार मिला, उस समय वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने उसी समय अपने मंत्री को सेना तैयार करने की आज्ञा दी। इस समाचार के सुनते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। जयचंद की रानी को जब यह समाचार मिला, तब उसने जयचंद को बहुत समझाया और कहा कि पहले संयोगिता का स्वयंवर कर लो, फिर पृथ्वीराज से युद्ध करना, क्योंकि इस समय सारे देशों के राजा यहाँ उपस्थित हैं। यह समाचार संयोगिता को भी पता चला। संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी सुन सुनकर उन पर आसक्त हो रही थी। जब उसे यह समाचार पता चला, तब वह बहुत दुखी हो गई। धीरे धीरे उसके दिल में स्थित प्रेम के बीज का अंकुर फूट निकला। जयचंद की रानी ने तभी यह बात जयचंद से कही। जयचंद ने उसे समझाना चाहा, परंतु संयोगिता ने अपनी सहेलियों से साफ कह दिया कि मैं दूसरे का वरण नहीं करूंगी, जिसके उपरांत दूत ने यह बात जयचंद से जाकर कह दी। उत्तर सुनकर जयचंद गुस्से से अधीर हो गया और उसने पृथ्वीराज को मारकर निश्चिंत तो होना ही उचित समझा। वह मन ही मन सोचने लगा कि पृथ्वीराज के मर जाने से संयोगिता शांत हो जाएगी और फिर दूसरे से विवाह करने को तैयार भी हो जाएगी। उस समय वह गुस्से के कारण भूल गया था कि राजपूत बालाएं जान देने को तैयार रहती हैं, परंतु अपना हठ नहीं छोड़ती हैं। यज्ञ का विनाश तो हो ही गया था। अब कन्नौज की सेना लगातार पृथ्वीराज की खोज में दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। उसने दिल्ली की सीमा पर पहुंचकर बहुत सारी जमीन दबा ली और बहुत सारे ही गांव लूट लिए। इस समय राज्य का भार अपने सामंतों को सौंपकर पृथ्वीराज शिकार के लिए चले गए थे। सामंतों ने जयचंद की सेना को अनायास ही मार भगाया। रासों में लिखा है कि शहाबुद्दीन की माँ बहुत सारी बेगमों के साथ मक्के की यात्रा करने जा रही थीं। वे भारत के हांसी प्रांत से होकर जा रही थीं। उस समय हांसी में नरवाहन नामक नागवंशी सरदार सूबेदार के पद पर नियुक्त था। जब उनकी सवारी दिल्ली राज्य के सरहद के पास पहुंची, तब पृथ्वीराज के सामंतों ने उसे लूट लिया। सारा धन लूट कर बेगमों को छोड़ दिया, जिसके उपरांत वे गजनी लौट गईं। यह समाचार सुनकर शहाबुद्दीन गुस्से से अंधा हो गया और बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। जब यह सेना हांसी से 10 कोस की दूरी पर आ पहुंची, तब पृथ्वीराज के सामंतों को खबर मिली। समाचार पाते ही चामुंड राय ने किले बंदी कर ली। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, परंतु हांसी के किले पर किसी तरह भी यवनों का अधिकार नहीं हो सका। जब यह समाचार शहाबुद्दीन को पता चला, तो वह खुद बड़ी सेना लेकर आया, परंतु पृथ्वीराज तथा समर सिंह ने इस युद्ध में भी जीत प्राप्त करके उसे भगा दिया।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।